का स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह आज इंदौर से मध्य प्रदेश के सभी 55 जिलों में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालयों का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि राजनीति और लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार को 39 वर्ष बाद आज फिर खोलने की प्रक्रिया शुरू। मौसम विभाग ने कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और दक्षिण कर्नाटक में अगले 3 दिन मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स फाइनल में आज सर्बिया के नोवाक जोकोविच का सामना मौजूदा चैंपियन कार्लोस अल्कराज से होगा। और बर्लिन में यूरो कप फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल में आज रात इंग्लैंड का मुकाबला स्पेन से। दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज इंदौर से मध्य प्रदेश के 55 जिलों में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालयों का शुभारंभ करेंगे। लोकार्पण कार्यक्रम इंदौर के अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय कला और वाणिज्य महाविद्यालय में होगा। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव भी शामिल होंगे। गृहमंत्री ने आज एक पेड़ मां के नाम अभियान में भाग लिया। जिला स्तरीय कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष, उप मुख्यमंत्री और राज्य के मंत्री मौजूद थे। पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित करने वाले इस अभियान के तहत इंदौर जिले में आज 11 लाख पौधे लगाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हमले की कड़ी निंदा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि राजनीति और लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं है। प्रधानमंत्री ने श्री ट्रंप की हालत में शीघ्र सुधार की कामना करते हुए कहा कि भारत के लोग पीड़ित परिवार, घायलों और अमरीकी जनता के साथ हैं। एक रिपोर्ट।
अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कल रात पेंसिल्वेनिया में एक चुनाव सभा में गोली लगने से घायल हो गए थे। इस सिलसिले में सुरक्षाकर्मियों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बंदूकधारी को मार गिराया। इस घटना में एक व्यक्ति की भी मौत हुई है और एक की हालत गंभीर है। श्री ट्रंप ने एक बयान जारी कर सीक्रेट सर्विस और अन्य अधिकारियों की त्वरित कार्रवाई की प्रशंसा की है। उन्होंने जानकारी दी है कि एक गोली उनके दाहिने कान के ऊपरी हिस्से में लगी। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस घटना की निंदा की है और श्री ट्रंप को सुरक्षित निकाल लेने के लिए सीक्रेट सर्विस के अधिकारियों की प्रशंसा की है। समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
विश्व नेताओं ने अमरीका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप पर हमले की निंदा की है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने राजनीतिक हिंसा की निंदा की है। उन्होंने ट्रंप के शीघ्र स्वस्थ होने के लिए शुभकामनाएं दी। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार ट्रंप पर हुए हमले से स्तब्ध हैं। उन्होंने कहा कि देश में इस तरह की हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। अमरीका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा कि हमारे लोकतंत्र में राजनीतिक हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने हमले पर दुख व्यक्त करते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि किसी भी रूप में राजनीतिक हिंसा का हमारे समाज में कोई स्थान नहीं है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने सोशल मीडिया पोस्ट पर आशंका व्यक्त की और उम्मीद जताई कि चुनावी अभियान के दौरान नफरत और हिंसा का कुसंवाद तथा जिम्मेदारी से खत्म किया जा सकता है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप पर गोलीबारी से आहत हैं। एक पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि राजनीतिक हिंसा कभी भी स्वीकार्य नहीं है। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने कहा कि विश्व को लोकतंत्र को चुनौती देने वाले किसी भी प्रकार की हिंसा के खिलाफ मजबूती से खड़ा होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने लिखा है कि चुनावी रैली में हुई घटना चिंताजनक है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल ने हमले को भयानक राजनीतिक हिंसा बताया और ट्रंप के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा ने कहा कि श्री ट्रंप पर हमले का दृढ़ता से विरोध किया जाना चाहिए। इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ट्रंप पर हमले से स्तब्ध हैं। एक पोस्ट में उन्होंने ट्रंप की सुरक्षा और शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। ओडिशा के पुरी में भगवान श्री जगन्नाथ के खजाने रत्न भंडार के दरवाजे खोलने की प्रक्रिया आज दोपहर 1:28 पर शुरू हो गई। एक विशेष दल रत्न भंडार के अंदर के दरवाजों को खोलने का प्रयास कर रहा है। पिछली बार रत्न भंडार 1985 में खोला गया था और इसके आभूषणों और अन्य कीमती वस्तुओं की सूची आखिरी बार 1978 में बनाई गई थी। 12वीं सदी के श्री जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार के आंतरिक कक्ष में हीरे, सोने और कीमती रत्नों सहित दुर्लभ आभूषणों का संग्रह है। सदियों से भक्तों और राजाओं द्वारा भगवान जगन्नाथ को दान किए गए इस खजानों को संरक्षित और सूचीबद्ध किया गया है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में जगन्नाथ रत्न भंडार को फिर से खोलने के लिए गठित पैनल के अध्यक्ष और ओडिशा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश विश्वनाथ रथ ने बताया कि सरकार ने एसओपी जारी की है।
गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी कम आउट विद द रिक्वायर्ड एसओपीज इन थ्री पार्ट्स मोस्टली। वन इज फॉर द ओपनिंग दिस वे और दैट वे ऑफ द रत्न भंडार बोथ भीतर एंड बाहर एंड देन टेकिंग कस्टडी ऑफ द ऑर्नामेंट्स एंड द ज्वेलरी स्टैक देयर इन बोथ द भंडार एंड सेक्शन वाइज टू डिफरेंट रूम्स ऑलरेडी सिलेक्टेड इन साइड द गर्भगृह।
ओडिशा में कल होने वाली विश्व प्रसिद्ध बाहुडा यात्रा की सभी तैयारियां चल रही हैं। इस दौरान भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन के रथ पवित्र शहर पुरी वापस आएंगे। अपनी मौसी गुंडिचा देवी के मंदिर में 8 दिन बिताने के बाद सभी देवता अपने निवास श्री जगन्नाथ मंदिर लौट आएंगे। इसके साथ ही रथ यात्रा का समापन हो जाएगा। श्रद्धालु आज शाम 5 तक भगवान के दर्शन कर सकते हैं। इसके बाद गुंडिचा मंदिर के दरवाजे बंद कर किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 3-4 वर्ष में 8 करोड़ रोजगार सृजित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इससे बेरोजगारी के बारे में दुष्प्रचार करने वालों को करारा जवाब मिला है। मुंबई में कल भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि देश में कौशल विकास और रोजगार की आवश्यकता है और केंद्र सरकार इस दिशा में काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने एक कार्यक्रम के दौरान सड़क, रेलवे और पत्तन विकास से जुड़ी 29,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की आधारशिला रखी। श्री मोदी ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार ने पालघर में दहानू में वधावन बंदरगाह को स्वीकृति दे दी है। इस पर 76,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी और 10 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज और कल स्विट्जरलैंड के वाणिज्य मंत्री के साथ बैठक करेंगे। बैठक का उद्देश्य भारत और स्विट्जरलैंड के बीच द्विपक्षीय आर्थिक तथा व्यापक साझेदारी को और सशक्त बनाना, आर्थिक संबंधों और पारस्परिक विकास को बढ़ावा देना है। श्री पीयूष गोयल G7 व्यापार मंत्रियों की बैठक के आउटरीच सत्र में भाग लेने के लिए मंगलवार को इटली जाएंगे। श्री गोयल G7 देशों के व्यापार मंत्रियों और जनसंपर्क सत्र में भाग लेने वाले अन्य देशों के मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। नीति आयोग ने ई फास्ट इंडिया पहल के अंतर्गत नीति गियर शिफ्ट चैलेंज शुरू करने की घोषणा की है। इस हैकाथॉन का उद्देश्य देश की आर्थिक और पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करते हुए भारत में कार्बन उत्सर्जन रहित ट्रक वाहनों के संचालन के लिए नवीन व्यवसाय मॉडल को बढ़ावा देना है। नीति आयोग ने इलेक्ट्रिक ट्रकों के संचालन में वित्तीय, तकनीकी और परिचालन चुनौतियों का समाधान करने वाले नवीन व्यवसाय मॉडल विकसित करने के लिए छात्रों, परिवहन सेवा पेशेवरों, शिक्षाविदों और शोधकर्ताओं को भी आमंत्रित किया है। कार्यक्रम में ई फास्ट इंडिया के जाने माने लोग, वित्तीय संस्थानों और उद्योग मंच के प्रतिनिधि शामिल होंगे। नीति गियर शिफ्ट चैलेंज का आयोजन IIM बेंगलोर, स्मार्ट फ्रेट सेंटर इंडिया, WRI इंडिया और अन्य संस्थानों के सहयोग से किया जा रहा है। नीति आयोग ने कहा है कि हैकाथॉन 2 राउंड में होगा और गियर शिफ्ट चैलेंज भारत में टिकाऊ माल परिवहन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उपभोक्ता कार्य विभाग ने पैकेटबंद वस्तुओं में समानता बनाए रखने के लिए लीगल मेट्रोलॉजी पैकेज्ड कमोडिटीज नियम 2011 में संशोधन का प्रस्ताव किया है। संशोधन में ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्लेटफार्मों पर खुदरा बिक्री के लिए प्री पैकेज्ड वस्तुओं की सभी जानकारी घोषित करना अनिवार्य करने का प्रस्ताव है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने कहा कि संशोधन से पैकेटबंद वस्तुओं के लिए समान मानक स्थापित करने में मदद मिलेगी, जिससे विभिन्न ब्रांडों और उत्पादों में स्थिरता और निष्पक्षता को बढ़ावा मिलेगा। मंत्रालय ने कहा कि नए नियम औद्योगिक उपभोक्ताओं या संस्थागत उपभोक्ताओं के लिए पैकेटबंद वस्तुओं पर लागू नहीं होंगे। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल की शक्तियां बढ़ा दी हैं। इसके लिए जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में संशोधन किया गया है। इससे अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों, पुलिसकर्मियों के स्थानांतरण और न्यायपालिका से जुड़े अधिकारियों की नियुक्ति के मामलों में उपराज्यपाल की शक्तियां बढ़ गई हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। मौसम विभाग ने कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में आज से 17 जुलाई तक तेज से अत्यधिक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने सतारा, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी और ठाणे में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है।
महाराष्ट्र में सिंधुदुर्ग जिले में शनिवार से लगातार बारिश होने से निचले इलाकों में पानी भर गया और इससे यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। तेरेखोल नदी चेतावनी स्तर को पार कर गई है। IMD ने आज रेड अलर्ट और अगले दो दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मालवण में समुद्र अशांत है। तटीय इलाकों में हवा की ताकत बढ़ गई है और गति 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटा है। NDRF की टीम सिंधुदुर्ग पहुंच गई है। जिलाधिकारी ने तटीय इलाकों के लोगों को सावधानी बरतने की अपील की है। भावना गोखले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
इस बीच मौसम विभाग ने नागालैंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आज और कल तटीय कर्नाटक और दक्षिण कर्नाटक के भीतरी भागों में तेज वर्षा हो सकती है। तेलंगाना, मराठवाड़ा और विदर्भ में कल बहुत तेज वर्षा का अनुमान है। और अब खेल खबरों के साथ है मुकेश कुमार।
विंबलडन टेनिस के पुरुष सिंगल्स फाइनल में आज सर्बिया के नोवाक जोकोविच का सामना मौजूदा चैंपियन स्पेन के कार्लोस अल्काराज से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 6:30 बजे से शुरू होगा। जोकोविच 7 बार विंबलडन का खिताब जीत चुके हैं, जबकि अल्काराज दूसरी बार इस प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचे हैं। प्रतियोगिता के मिक्स डबल्स फाइनल में आज पोलैंड के जान जेलेंस्की और ताइवान की सू वेई सी की जोड़ी का मुकाबला मेक्सिको के सेंटियागो गोंजाल्वेज और गुलियाना ओल्मोस की जोड़ी से होगा। इस बीच महिला सिंगल्स फाइनल में कल चेक गणराज्य की बारबोरा क्रेचिकोवा ने इटली की जैस्मिन पाउलिनी को हराकर अपना पहला विंबलडन खिताब जीता। उधर बर्लिन में यूरो कप फुटबॉल के फाइनल में आज स्पेन का सामना इंग्लैंड से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 12:30 बजे से शुरू होगा। स्पेन चौथी बार ये खिताब जीतने की कोशिश करेगा, वहीं इंग्लैंड लगातार दूसरी बार यूरो कप का फाइनल खेलेगा। उधर मायामी में कोपा अमरीका फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में कल सवेरे अर्जेंटीना और कोलंबिया आमने सामने होंगे। अर्जेंटीना लगातार तीसरी बार चैंपियनशिप जीतने के इरादे से मैदान पर उतरेगा, वहीं कोलंबिया की टीम दूसरी बार इस टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम करने की कोशिश करेगी। उधर भारत और जिम्बाब्वे के बीच 5वां और अंतिम T20 क्रिकेट मैच आज हरारे में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 4:30 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम इस श्रृंखला में पहले ही 3-1 की अजेय बढ़त ले चुकी है। इससे पहले कल चौथे मैच में भारत ने जिम्बाब्वे को 10 विकेट से हरा दिया था। मुकेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी ने आज नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में भारत इन पेरिस ओलंपिक मैराथन को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर श्री सिंह ने अभिभावकों से अपने बच्चों को शिक्षा के साथ साथ खेल में भी भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने की अपील की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह आज इंदौर में से मध्य प्रदेश के सभी 55 जिलों में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालयों का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि राजनीति और लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार को 39 वर्ष बाद आज फिर खोलने की प्रक्रिया शुरू। मौसम विभाग ने कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और दक्षिण कर्नाटक में अगले 3 दिन मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स फाइनल में आज सर्बिया के नोवाक जोकोविच का सामना मौजूदा चैंपियन कार्लोस अल्काराज से होगा। और बर्लिन में यूरो कप फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल में आज रात इंग्लैंड का मुकाबला स्पेन से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।